darkness.
देखता
कान से सुनता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, जीभ से स्वाद लेता हूँ और स्पर्श इंद्रिय से कठोर आदि का ज्ञान करता हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से तो तेरे को जानना होता ही, क्योंकि जो इंद्रियां स्वयं जड़ है, जिनमें स्वयं में ज्ञान नहीं है, वे ज्ञान का उत्पादन हो ही नहीं सकते। अरे खंड खंड भागेंगे जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का परिणाम होता है, ज्ञान का इंद्रिय ज्ञान, उस इंद्रिय ज्ञान को भी यहाँ तो आत्मा आत्मा से उबाई नहीं है। और इंद्रियों के विशेष पदार्थों में जो परद्रव्य है, परद्रव्य में भी विशेष रूप से उद्गल स्कंद, और उद्गल स्कंदों में भी कौन से स्कंद, बहुत स्थूल और नाम मात्र के स्कंद। अपने को जितने इंद्रियों के माध्यम से जो स्कंद जानने का आते ना, उससे अनंत अनंत बने स्कंद इस विष्णु में भरे पड़े। देखो एक एक समझो, इंद्रियों के आंख इंद्रियों के माध्यम से अपन ने बाहरी शरीर को जाना, ये बाहरी जो भजन स्कंद शरीर है, इसके अंदर क्या क्या है जान सकते, ऐसे विचार करना। तो ये सब इन तीनों को यहां पर इंद्रिय कहा, इन तीनों को यहां पर ये कहा, ठीक है, किसको ये कहा, द्रव्य इंद्रिय को ये कहा, भाव इंद्रिय को ये कहा, और इंद्रिय के विशेष पदार्थों को ये कहा। और इनसे भिन्न भगवान आत्मा को भी क्या बनेंगे, इनसे भिन्न भगवान आत्मा को भी क्या है, अथवा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, वो ज्ञान स्वभावी है। और ये क्योंकि आत्मा से भिन्न है, इसलिए इनको एक नाम दिया, ये सब ये ही है, ये है मेरे से भिन्न परद्रव्य। वो यहां पे कह रहे हैं, अब देखो यहां पे अभी अपनी अब एक 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 इंद्रिय के बारे में बात होती है, तो द्रव्य इंद्रिय क्या है, हर इंद्रिय क्या है, और इंद्रिय के विशेष पदार्थ क्या है, और भगवान आत्मा को इनसे भिन्न कैसे करना पद्धति वो है। पहले द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विशेष पदार्थों का स्वरूप को बताइए, और उनको उनसे कैसे भिन्न करना भगवान आत्मा को, वो बात भी यहां पे बताएंगे। देखिए यहां पे कहते हैं, देखो यहां पे अनादि अमर्याद मंद पर्याय के बस जिसमें समस्त स्वर प्रकार विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक मेक हो रही है कि कोई भेद दिखाई नहीं देता। ये परिस्थिति कब से, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के रहते, ये जो संबंध है ना, ये भी अनादि से चला, और अनादि से संबंध चलाने से जिसमें स्वर पर का विभाग अस्त हो गया है, अस्त हो गया है ना, स्वर पर का विभाग मिट नहीं गया, आत्मा आत्मामुख रहा और शरीर अथवा इंद्रियां वो परमुख नहीं, दोनों में विभाग है, दोनों में भिन्नता है, दोनों में जुदाई है, लेकिन वो जुदाई मानो कि अस्त हो गई, अस्त हो गई माने अज्ञानी को भिन्नता दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिसे भिन्नता दिखाई दे वो अज्ञानी के थी। देखो अगर भिन्न नहीं हो और भिन्न नहीं हो और भिन्नता दिखाई ना दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भिन्न है कि तो भिन्नता दिखाई दे, लेकिन भिन्न है और अपने को भिन्नता दिखाई नहीं देता है, तो भिन्न भिन्न भी कहता सर्वथा भिन्न है, प्रसंसित नहीं, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां, और इसको बाद में लेना, शरीर परिणाम को प्राप्त ये जो द्रव्य इंद्रियां हैं, ये द्रव्य इंद्रियां शरीर के अंग विशेष हैं, और जब शरीर अपने से न्यारा है शरीर का और आत्मा का सर्वथा कोई संबंध नहीं है, तो शरीर के अवयवभूत द्रव्य इंद्रियां आत्मा की है, ये बात समझ लें। अपने यहां पर मुझे पास स्वामी महान दिगंबर संत हुए और उन्होंने इष्टोपदेश नाम का एक ग्रंथ बनाया। उसमें आचार्य भगवान ने कहा कि भैया सारे तत्व ज्ञान का सार मुक्त तात्पर्य क्या है? उन्होंने कहा जीव जुदा खुदगल जुदा यही तत्व का सार, सारे तत्व ज्ञान का सार। पहले की बात याद रखिए, भूतकाल में मेरा नहीं था, वर्तमान में मेरा नहीं, भविष्य में मेरा नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान मानता है कि भूतकाल में भी मेरे थे, वर्तमान में भी मेरे हैं और भविष्य में भी मेरे। आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि जीव जुदा उद्गल जुदा यही तत्व का था। अब जब हमने जीव और उद्गल मनुष्य जब इनको एक भिन्न है और इसको सारे तत्व ज्ञान का सार आचार्य भगवान कह रहे हैं, उस बात में कितनी बड़ी गंभीरता। और जब शरीर भिन्न है तो शरीर के चिन्ह विशेष आत्मा से भिन्न हुए कभी हुए, कोई कहे भैया आत्मा और शरीर सर्वथा भिन्न, और फिर कोई अगले से किसी प्रश्न कहते तुम बताओ तुम्हारे हाथ ही कितनी, हमारा उत्तर क्या है? तो आगे है, अरे जब तेरा शरीर ही नहीं, तो ये शरीर नहीं है तो आंखें तेरी कहां से आए एक बार, और जब आंखें तेरी है ही नहीं तो आंखों से तू जानता है, ये बात कहां से? देखो उपदेश हमने क्या बात बताई थी, उसमें ये दिया हमने उद्गल द्रव्य, उद्गल द्रव्य के स्वामित्व का अभाव होने की वजह, आत्मा को उद्गल द्रव्य के स्वामी पने का अभाव है, इसलिए आत्मा द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से जानता नहीं है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने लिया था, स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षरोत्सव ज्ञान का भी भगवान आत्मा में अभाव होने की वजह से वो भावे के माध्यम से भी जानता नहीं है, रस को चखता नहीं है, सुगंध दुर्गंध को सूंघता नहीं है, ऐसे ऐसे सब नजर में क्या रहना चाहिए। हम लोग संयोग को नजर में रखकर स्वभाव को समझना चाहते हैं, नजर में रखते हैं संयोग और हमें समझना है स्वभाव, कभी तीन साल में समझ नहीं आए। स्वभाव को समझते हुए संयोग का ज्ञान करो, कोई आपत्ति नहीं। स्वभाव ऐसा है और वर्तमान संयोग में ये है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। संयोग को संयोग मानो, और हम क्या करते हैं, हमारी हृदय तो संयोग पर रहती है, शरीर में एकाकृति है और आत्मा की और शरीर की भिन्नता की बातें करते हैं। पंडित जी साहब ने लिखा मोक्ष आप कर सकते हैं, जैसे किसी अन्य को अन्य से भिन्न बता रहा हो, ऐसे शरीर और आत्मा की भिन्नता प्रदर्शित करता है, लेकिन मैं शरीर से भिन्न भगवान आत्मा हूं ऐसा भाव हासिल हूं। इसी तरह यहां पर इंद्रियों से भिन्नता क्यों नहीं भाषित हो, इसलिए भी अनिंद्रिय भगवान आत्मा दृष्टि में नहीं आता, अनिंद्रिय भगवान आत्मा दृष्टि में आवे नहीं, इसका मतलब क्या, इंद्रियों में एकत्व बुद्धि कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, अगर कहीं ना कहीं भले द्रव्य किसी में भी एकत्व बुद्धि नहीं पड़ी हो तो आत्मा अनुभव में आए या नहीं रहे, और आत्मा अनुभव में आवे और इनमें एकत्व बुद्धि रहे ऐसा तीन काल में एक ही काल है, आत्मा का अनुभव में आना और द्रव्य इंद्रिय का इंद्रिय का इंद्रिय के विषय भूत पदार्थों का भेद ज्ञान, इनसे भेद ज्ञान ये मैं नहीं। वो यहां पे कहा कि वो क्या है, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को कैसे करें, द्रव्य इंद्रियों को सिद्ध कैसे करें, क्या करें, उन्होंने कहा मैं प्रवीण था। देखो ये जो मोक्ष अधिकार में जहाँ राग वगैरह की बात आई ना, राग को प्रज्ञा जीवी कुमार प्रज्ञा जीवी है ना, वहां पर उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है। एक शब्द का क्या प्रयोग किया है? दारुण विदारुण। क्या मतलब इसका? रंच मात्र की दया होने से अरे अनाधिकाल से अपने साथ में चली आ रही है इंद्रिया, अनाधिकाल से अपन इंद्रियों के बिना कभी रहे नहीं, पर आज अपना एकदम इनको भिन्न कर रहे हैं इंद्रिया। ऐसी ऐसी बात कैसी बात है? एकदम भिन्न कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही हुआ कि भाई तुझे पता नहीं कि इनमें एकत्व की बुद्धि से तेरे अंदर अनाधिकाल से मुख्यात जैसे अनाधिकाल से इंद्रिया अधिकार संयोग है, शरीर अधिकार संयोग है, वैसे ही अनादिकाल से इसने अपने पने की मान्यता रूप मिथ्यात्व का जनन भी की था। और फिर भिखारी में जब अपन ये पढ़ते ना असद्भूत व्यवहार में से देह और आत्मा एक है, ये असद्भूत व्यवहार नहीं करना पड़ेगा, तो असद्भूत व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। जो नए चक्र हमारे अज्ञान के अंत करने का कारण बनना चाहिए था, उसी नए चक्र के माध्यम से हम अपने अज्ञान पर कवच कर सोचे। असद्भुत व्यवहार नहीं कहा ना, असद्भुत व्यवहार नहीं कहा, इसका मतलब वो पूरी गहराई में झूठा हूं ऐसा होता है। खंडवा है अपने खंडवा, और खंडवा में दो बार मेरे को जाने का अवसर मिला, कार्यक्रम का अभियान वगैरह का स्वाध्याय का प्रोग्राम था, तो दो बार में किया। हम लोग शाम को घूमने जाते थे तो एक दुकान है वहां पर, बहुत अच्छी दुकान, उसका एक नाम लिखा उसको, उस दुकान को तीन बार देखे, उस पर एक बोर्ड लगा हुआ सुधीर जी, क्या बोर्ड लगा? नकली सोने की रसीद है ना, नकली सोने की असली दुकान। मतलब वो दुकानदार ये कह रहा है कि नकली सोने की असली दुकान है, मतलब इस दुकान में तो असली सोने की उम्मीद पर चल रहा। अब बोलो वो सत्य कह रहा है, मैं झूठ बोल व्यवहार नहीं कहता है, मैं झूठ बोलता हूं ये परम सत्य है। क्या है वो खुद कह रहा है मैं असद्भुत हूं, मतलब मेरी दुकान पर तुम्हें नकली सोना मिलेगा, और नकली सोने के लिए यही एक मात्र दुकान है। फिर भी हम अब वो चमक दमक लेकर कहते हैं कि भाई साहब आपकी दुकान में नकली हो सकता है, आप भी बाजार में दुकान लेगी वो भी हो गया, मेरा गोल्ड नहीं पड़ा नहीं नहीं आप बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है आप दुकान लेके बैठे हो, इतने बच्चों की बात है। अरे मेरा बोर्ड तो पड़ा, मैं खुद घोषित कर रहा हूं कि यह असली नकली सोने की असली दुकान है। अब उसको फिर भी कोई असली सोना माने तो ठगाया जाएगा नहीं ठगाया बराबर है। इसी तरह वो जिसको हम कहते हैं व्यवहार से रहेंगे, व्यवहार का मतलब व्यवहार माने को खुद कह रहा है मैं असद्भूत व्यवहार हूं, शरीर और आत्मा को एक कहने वाला, इंद्रिय और आत्मा को एक कहने वाला, मैं असद्भूत व्यवहार में हूं। मतलब मेरी बात को तुम सत्य मानोगे तो खुदाएगा, ये व्यवहार नहीं खुद घोषित करता है। उसके बाद भी हम नहीं लेंगे, ये तो समय ज्ञान का बात, समय ज्ञान का अंत होता है। समय ज्ञान ही ये कह रहा है ना, मेरे दो नए हैं और उसमें से एक नए को मैंने एक काम दिया है, जो त्रैकालिक सत्य है तो उसका प्रतिपादन करना, और दूसरे नए को ये काम दिया है जो त्रैकालिक सत्य नहीं तात्कालिक परिस्थिति है तो उसका ज्ञान कराना, और साथ में अपने नाम के आगे असद्भूति लिख देना। समझदार होगा, ईसा ने समझ जाएगा, और नहीं समझदार समय ज्ञान के उससे समय ज्ञान होने में काम आता है। हाँ, वो असंभूत व्यवहार होता, असंभूत व्यवहार होने पर भी, संयोग का ज्ञान कराने वाला व्यवहार होने पर भी, उपचार का ज्ञान कराने वाला व्यवहार होने पर भी, यदि उसके नाम के आगे ये लगा होता कि सम्यक ये समीचीन व्यवहार है, तो गड़बड़ वो तो अपनी पहचान खुद प्रसिद्ध कर रहा है। या मैं एक परिस्थिति का ज्ञापन कराऊंगा, लेकिन वो एक परिस्थिति है, वो एक शाश्वत सत्य नहीं। और धर्म की उपलब्धि जल्दी होगी तो शाश्वत सत्य के लक्ष्य से होगी, वर्तमान परिस्थिति के आधार से नहीं। क्यों? क्योंकि परिस्थिति बदल जाएगी, और अगर परिस्थिति के लक्ष्य से अथवा परिस्थिति के आधार पर धर्म हो तो जो ही वो परिस्थिति बदली और नई परिस्थिति आई, धर्म खत्म हो जाएगा। और शाश्वत वस्तु के अवलोकन से जो धर्म आएगा, तो वस्तु शाश्वत है ना, तो शाश्वत वस्तु के अवलोकन से प्रकट होने वाला धर्म तो वो भी शाश्वत सीधा है। तो जो जब भेद ज्ञान की बात करती हूँ ना, वो कहते दाना विदार कर देना, एक बार वहां पर दयावत दिखाना। अरे अनादि काल से जो शरीर, जो इंद्रियां अपने साथ एक एक होकर चली आ रही, उनको मैं भेद ज्ञान से भिन्न कर दू, उनको अगर तुझे भविष्य में सक्रिय नहीं प्राप्त करना है, अगर तू चाहता है कि मुझे इंद्रियां नहीं मिले ना, मुझे जानने के लिए इंद्रियों की गुलामी में नहीं आना पड़े, मैं अपने सहज ज्ञान द्वारा समूचे अपनी आत्मा के साथ साथ समूचा विश्व भी मेरे ज्ञान में गई हो, ये काम करेगा। बात समझा रही है? वो यहां पे कहने के भाई देखो क्या कहा, शरीर परिणाम को प्राप्त जो है ना, अंतर ये है, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को, तो द्रव्य इंद्रिय क्या है, शरीर परिणाम को प्राप्त, शरीर का परिणाम है शरीर, और शरीर का अंग, शरीर स्वयं ही अनंत उज्जल परमाणुओं का जनता है, अनंत उज्जल परमाणुओं का पिंड है, उसमें भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं, उसमें भगवान आत्मा का दर्शन नहीं, उसमें भगवान आत्मा का सुख नहीं, उसमें भगवान आत्मा का दुख नहीं, तो शरीर परिणाम को प्राप्त सर्वथा पौतलिक है। अज्ञा तो वो शरीर परिणाम को प्राप्त है, शरीर बिगड़ जाएगा और इंद्रियां बिगड़ जाएंगी। अभी पांच इंद्रियां हैं और सब लोग मर करके यहां से दो इंद्रियों से चला गया, बिल्कुल दो इंद्रियां रह गई। ये परिस्थिति जो बनी है ना, पंच इंद्रिय वाली, ये परिस्थिति सदा काल बनी रहने वाली नहीं है, ये तो शरीर परिणाम को प्राप्त है। आत्मा यहां से गया, नया मिलेगा, क्यों? क्योंकि नया तो मिलेगा ही, क्योंकि जिसने कुदरत को अपना माना, जिसने शरीर को अपना माना, जिसने इंद्रियों को अपना माना, जिसने ये माना कि इंद्रियों से मुझे ज्ञान होता है, इंद्रियों के बिना मुझे ज्ञान नहीं होता, ये सब जिसने माना, एक तरह से जिसने इंद्रियों से मुझे ज्ञान होता है, मैं इंद्रियों से जानता हूं, उसने भी इंद्रियों को अपना अंग माना, अपना स्वरूप माना। और नियम सार में अजीव अधिकार के अंदर एक कलश है, उसमें अमृतचंद्र उसने अपने पद्म कमल धारण किए हुए कहा, जब तक यह जीव इस उद्गल को अपना मानेगा, तब तक संसार यात्रा में यह उद्गल इसका साथ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक वो कुदरत को इंद्रियों को अपना मानते रहोगे, तब तक नई नई इंद्रियां प्राप्त होती रहेंगी। फिर ये शरीर गया, नया शरीर मिल गया, नई इंद्रिया मिली, फिर वो शरीर गया, फिर नई इंद्रियों का शरीर के साथ ही नई इंद्रियों का सही हो। अनादि काल से आज तक यही तो हो रहा है, इसलिए उन्होंने लिखा है, क्या लिखा उन्होंने, उनको लिखा अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के मत, जिसमें समस्त स्वर पर का विभाग अस्त हो गया है, विभाग दिखाई नहीं देगा, बदल आया, ये सब धरती की जाए। आपको जो भी दिखाई देती ना आपको, ये सब धरती आप बंद करके लोगों को जिंदगी दी जाए। लोग इसकी बहुत खुश होते हैं, हाँ तुम्हारे को जिंदगी दी जाए। और भजन में लिखा देह करी क्रिया आपको मानव जीवन चाहिए, आपका नहीं जाना सुने ऐसा ज्ञान चाहिए। शरीर की क्रियाओं से अपने को बहुत सारी मानता है। इसी तरह यहां पर अनादिकाल से इसको क्या लिया शरीर परिणाम दिखाई नहीं देगा, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो कैसे करे निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से लेकर के अभ्यास में इतने प्रवीण हो जाओ। निर्मल वेदाभ्यास की वेद अभ्यास तो वो है, कैसा वेद अभ्यास है, तेरी दुकान है, ये मेरी दुकान है, ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, ये तेरा धन है, ये मेरा धन है, अन्य को अन्य से जिस मतलब हो ऐसे शरीर और आत्मा की भिन्नता प्रवृत्ति करता है। यहां तक भी आया लेकिन वैसा भाव खत्म, निर्मल वेदाभ्यास की भूमिका द्वारा क्या करे उससे प्राप्त अंतरंग में जैसा भगवान आत्मा कैसा है अंतरंग में, क्योंकि शरीर बाह्य है ना, इसको बोला अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म कैसा है भगवान आत्मा। बहुत से लोग बोलते हैं कि कैसा है भगवान आत्मा, तो अज्ञानी क्या बोलता है कि भाई साहब हम कैसे बोले, हमें तो आत्मा आपको जान ही नहीं सकते, आत्मा को जान नहीं सकते, ये किसने जाना। श्रीमद जी ने कहा आत्मा एक ऐसी शक्ति है, यदि तुम उसकी नास्ती करने जाओगे तो भी पहले उसकी शक्ति सिद्ध हो जाएगी। कैसे, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म कैसा भगवान आत्मा, अति सूक्ष्म जो अति सूक्ष्म है उपयोग को भी सूक्ष्म करके ही वो पकड़ में आया। और एक शब्द का प्रयोग किया कैसा है, वो गुप्त नहीं है, समय सारे में 50 वर्ग एक गाथा में अव्यक्त के बोल आए नहीं है, छह तो आए अव्यक्त के, उस अव्यक्त ने त्रिकाली को अव्यक्त कहा, छह द्रव्य भिन्न महादेव सारी चर्चा आई है, गुरुदेव सिंह ने उसका बहुत अच्छा किया अव्यक्त। उसने कहा कि यहाँ जिसको तो अषायों को पर्यायों को व्यक्त कहा है उसकी अपेक्षा से इसको अव्यक्त करो और त्रिकाली को त्रिकाली की अपेक्षा से देखो। क्या त्रिकाली को त्रिकाली की अपेक्षा से देखो, वो सदा काल व्यक्त है, वो तो प्रकट पर्याय में परिवर्तन रूप व्यक्त नहीं है, इस अपेक्षा से अव्यक्त कहा, लेकिन त्रिकाली त्रिकाली के रूप में कभी गुप्त नहीं है। क्यों, त्रिकाली त्रिकाली के रूप में भी गुप्त हो जाए प्रकट पर्याय हो के देखिए। समय काल की छठी गाथा में लिखा नित्य उद्योग रूप होने से शरीर नहीं, क्या शब्द का प्रयोग किया, पहले अनादि सिद्ध किया, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, कभी किसी से विनाश को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अनंत भाई का वो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, लेकिन वर्तमान की बात करो ना। उन्होंने कहा नित्य उद्योग रूप होने से ज्ञान की प्रतिफल उपेक्षण वो तो नित्य उद्योग रूप है और जिसके उपयोग को होने से क्षणिक नहीं है। आज तक हृदय से क्या वापस किए वर्तमान की बात की, हर समय भगवान आत्मा अपने संपूर्ण वैभव के साथ उद्योग रूप प्रकाशमान प्रकाशित हो रहा है। तू कैसे कहता है कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आता? तू कैसे कहता है कि आत्मा गुप्त है? ज्ञान की जो लहर भगवान आत्मा में से उठती है, एक ज्ञान की लहर उस गायक को प्रसिद्ध करते हुए उठती है। पकड़, ज्ञान से गायक को पकड़, ठीक है। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म, और कैसा अति सूक्ष्म? चैतन्य स्वभाव। कैसा है अति प्रकट अति सूक्ष्म स्वभाव? कैसा? चैतन्य स्वभाव है। जो स्वभाव आत्मा के अलावा कहीं नहीं है और सभी आत्माओं में है, यद्यपि चैतन्य स्वभाव तो सभी आत्माओं में है, सभी आत्माओं के चैतन्य स्वभाव से हमें तो लेना देना, हमारा लेना देना हमारे अपने चैतन्य स्वभाव से है। और मैं चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, देखो ध्यान देना, चैतन्य स्वभाव तो है लेकिन चैतन्य स्वभाव के होने मात्र से इंद्रियां नहीं जीती जाती। क्या मतलब इसका? जब तक हम चैतन्य स्वभाव है ऐसे उस है की अस्ति का स्वीकार करके उसका अवलंबन है, अवलंबन देगा तो पर से एक टूटेगा। चैतन्य स्वभाव की अस्थि है और वो भी पूर्ण शुद्ध ज्ञान का धन पित भगवान आत्मा भगवान दे दिया। वो वर्तमान में विराजमान है, उसके विराजमान होने मात्र से इंद्रियां नहीं जीती जाती, उसका अवलंबन। कैसा चैतन्य स्वभाव का अवलंबन? हम कैसे लेता दिखाई तो देता ही नहीं, कैसे अवलंबन में? उसके लिए उन्होंने कहा कि वो प्रकट है, अंतरंग में प्रकट है। हम तो कहां ढूंढ रहे थे? हम ढूंढ रहे बाहर। शुक्ल धर्मदास जी का उनके गुरु ने कहा कि तुझे ऐसा प्रकट शुद्ध परमात्मा दिखाई देता है, सिद्धि की पूजा कर तो पूछा था उनसे, और उन्होंने सिद्धि की पूजा कर बताया, राग रही थे, रंग रही थे, रूप रही थे, स्पर्श रही थे, गंध रही थे, सब बताया। उन्होंने कहा ऐसा परमात्मा तुझे दिखाई देता है? तो सूरज जी ने बोले साहब मुझे तो दिखाई, मैं तो झिड़क देखता हूं, मुझे ये सब रंग होगी, ये सब है। उनके गुरु जी ने कहा जो अंधा हो रहा है ना, अंधा उसको दिखाई। अब उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में लिखा, जैसे तो वो जरा कुछ न थे, जब तक तत्व का बोध नहीं माना समाज में झगड़े करा थे, तो लेकिन होन आ रखी, नहीं तो उनको कोई अंधा दे दे, अंधा कहने वाले की आंखें खोल देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तुमने मुझे अंधा, लेकिन हो रहा था तो एकदम वो बात उन्हें चुन ली। अब अपने को अपनी 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 स्थिति क्या है, अपने को कोई बात लगती लगती नहीं, उधर का प्रयत्न नहीं होता, प्रयत्न नहीं होता, पर उनको वो बात लगती, अरे मैं दो आंखों वाला बिना चश्मे के देखते मुझे अंदर गए, हर कोई कोई रहते। और उसके बाद 9 महीने तक वो घूमते रहे, शिखर जी भी गए, जिधर मैं शिखर जी चलू इधर देखू, इधर उस पहाड़ी पर उस पहाड़ी में चेंजू दीजिए पड़ा नहीं दिखा। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, जैसे श्वान के मस्तक में कीट पड़ जाते हैं और उसको कहीं चेंज नहीं कर, यह पात्र आत्मा की प्राप्ति की पात्रता क्या है? ये आत्मा के बिना कहीं चेल नहीं बने। तो कैसी दशा हो गई? जैसे स्वान के मस्तक में कीड़े बने, और कीड़ा किसी स्वान के मस्तक में पड़ गया हो ना, आप उस स्वान को देख लेते कितना सर बढ़ा पड़ा, इसी तरह पांच माफी ऐसी गजब की तरफ रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिखता, है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। एक ही प्रश्न, एक ही उलझन। और जब नौ महीने तक उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, वापस अपने गुरु के पास आ गए और गुरु जी से कहा, प्रभु आपने जो बताया ऐसा सुखात्मा तो मुझे दिखता है। उनके गुरु जी ने कहा, सर्व को देखता है काको देख हुई है, सर्व को जानता है काको जान हुई है। अपन इसी भाषा को सरल भाषा में कहे, मुझे दिखाई नहीं देता ये किसे दिखाई देता। क्या क्या मुझे दिखाई नहीं देता ये किसे दिखाई देता है, ये जिसे दिखाई देता है वो आत्मा मुझे उस शिशु करने में है, मुझे दिखाई नहीं देता। तो ऐसा हो, एक बार एक कक्षा लगी कुछ बच्चे उधर में होते, ऐसे उधर में बच्चे थे पीछे पीछे जाने के, उनको तो मस्ती करते हैं। तो गुरु जी भी बड़े चतुर थे, तो गुरु जी ने कहा, जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो वे हाथ खड़ा करें। जिसको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो वे हाथ खड़ा करें। उन लड़कों ने हाथ रखा है। गुरु जी का बेटा क्यों, अगर तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मैंने क्या प्रश्न किया था, मेरी आवाज जिसे सुनाई नहीं दे रही हो वे हाथ खड़ा करें। अगर तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो तुमने हाथ खड़ा किया। इसका मतलब क्या हुआ, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे आत्मा जानने में नहीं आता, ऐसा आत्मा है तो तुझे क्यों नहीं जानने में आता। आचार्य भगवान कहते हैं, जिसे ये जानने में आता है कि मुझे जानने में नहीं आता, तो ये उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा अंतर में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के द्वारा है, जिसका स्वभाव ही जानने से बना है। चैतन्य का मतलब क्या है, स्वभाव चैतन्य का मतलब जानना देगा, तो जिसका स्वभाव ही जानने से बना है। और वो ये कहे कि मुझे जानने के लिए उपयोग नहीं देगा, शक्कर होती मीठी होती, अब उस मीठी शक्कर में क्या डाले की मीठी हो जाए, खारे नमक में क्या मिलावे कि वो खारा हो जाए। अरे छान बने से ही जो बना है, मीठे पन से ही जो बनी है, ऐसे नमक और शक्कर में कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती उसके मीठे और खारे होने में। इसी तरह जो जानने से ही बना है, जिसका स्वभाव ही चैतन्य है, और वो चैतन्य भी कैसा, अंतरंग में प्रकट मुक्त नहीं है, माने हर समय अपनी ज्ञान प्रगति की प्रगटता के द्वारा जो अपनी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, ये बता रहा है कि मैं विद्यमान हूं। लेकिन हम इतने स्थूल उपयोगी हो गए, अपने उपयोग को सूक्ष्म करके उस भगवान आत्मा को देखने का प्रयत्न कर आगे। उन्होंने कहा, सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन द्वारा, अवलंबन माने क्या, अवलंबन माने क्या, अवलंबन माने क्या, ये जो ज्ञान दर्शन को धारण करने वाली वस्तु है, ये जो जानने देखने रूप परिणति को धारण करने वाली वस्तु है, ये परिणति है ना, जानने देखने की परिणति हो रही है ना, ये किसी न किसी के आधार से हो रही हो, वस्तु नहीं हो और परिणति हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होने लगे तो मिट्टी नहीं हो आसमान में गड़े होने लगे, तो वस्तु है ना, वो प्रगति जो चैतन्य की प्रगति, चैतन्य की प्रगति कैसे होगी, चैतन्य और चैतन्य की चैतन्य रूप प्रगति किसका इसको प्रसिद्ध कर रही है, चैतन्य को, तो जिसको वो प्रगति प्रसिद्ध कर रही है वो मैं, इसका नाम अवलंबन। चैतन्य स्वभाव का अवलंबन माने उस चैतन्य उसका आश्रय, उसकी सन्मुखता, उसमें मैं बना, उसमें अहम और यही मैं, ऐसा जो कहा उसका नाम होता है अवलंबन। और ऐसा इसके अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से क्या किया, अलग अलग किया, मैंने क्या किया अलग किया, मैंने क्या किया अलग किया, माने अलग तो ठीक थी लेकिन तुझे अलग है ऐसा भान नहीं। तो इंद्रियों को अलग करने का मतलब, जब अनिंद्रिय भगवान आत्मा, चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा जो कि अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म तत्व है, और हमने अपने वर्तमान उपयोग को उस सूक्ष्म तत्व ने सूक्ष्म तत्व को पकड़ने योग्य बनाया, उस अर्जुन के निशान की भांति द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली। तो द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली तो सिर्फ सभी को प्राकृत पांडवों को लोगों का आत्मा की परीक्षा होगी, तुमने जरूर विजय सीखी, मैं जहां लगाऊ वहां पर तुम्हें निशाना साधना। जो भी उन्होंने निशाना साधा, वो जो जहां निशाना लगाना था बता दिया, पेड़ पे उसको रख दिया, पुतला बना करके एक पेड़ पे रख दिया, वहां तुझे उसकी आंख में बुलाया, दुर्योधन को बहुत दुर्योधन क्या दिख रहा है, गुरु जी सबसे पहले तो आप ही दिख रहे हो, मेरा जीवन धिक्कार है मैं आपको नहीं देखू। गुरु जी कहेंगे वहां गुरु जी के गुरु जी को मक्खन पाली लगाया, मक्खन पाली लगाया तो गुरु जी बात करेंगे नहीं करेंगे, गुरु जी क्या बैठा इधर, अभी ये नहीं क्या किधर बैठा रहा हूँ है ना। अच्छा बहुत सब खबर है, किसी ने कहा गुरु जी आप दिख रहे हो, किसी ने कहा गुरु जी पेट दिख रहा है, किसी ने कहा गुरु जी दालियां दिख रही है, किसी ने कहा गुरु जी ये दिख रहा है, किसी ने कहा गुरु जी वो दिख रहा है। जैसे जैसे लोग उत्तर देते गए और वैसे वैसे गुरु जी कैसे बैठे, और बड़ी प्रसन्नता है, कोई निर्णय नहीं कर पाया कि गुरु जी हमें खेल कर रहे पास करें, कि गुरु जी परीक्षा में ये नहीं आता हो गए क्या परीक्षा, तो गुरु जी और मैं गुरु जी मैं बैठ गया। और जब अर्जुन का अंदर आया पूछा गुरु जी ने बताया उसको, और पूछा बोल अर्जुन क्या दिखता है, गुरु जी उसकी आंख के अलावा कुछ नहीं, ये सब इतना उपयोग सूक्ष्म हो जाए कि जिस उपयोग में, अब मेरा प्रश्न आपसे है, क्या उस समय जिस समय गुरु जी से ये बात कह रहा है अर्जुन कुछ नहीं दिख रहा, आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, क्या कुछ नहीं दिख रहा था सपने, लेकिन लक्ष्य देने के लिए मुझे कुछ नहीं, सबका नकार और एक जहां लक्ष्य मारना है बस वो यही पद्धति जैन दर्शन। हमें हमारे वर्तमान परिणाम में वर्तमान उपयोग में उस वो चैतन्य नहीं दिखाई दे, ये देखो इसके अलावा कुछ है। तो अपने पर अपनापन चैतन्य में आया, शरीर में अपनापन टूटा, क्योंकि दो में अपनापन नहीं हो सकता, शरीर में अपनापन होगा तो चैतन्य में अपनापन नहीं होगा, और चैतन्य में अपनापन होगा तो शरीर में अपनापन हो, तो अपनापन शरीर में टूट गया, तो शरीर में अपनापन टूट गया तो इंद्रियों में अपनापन रहा, जो शरीर को ही भिन्न मान लिया, शरीर के अंग अब उनसे अलग बेदियां करने की जरूरत पड़ेगी, हो गया बेदियां, चैतन्य लक्ष्य में आया, चैतन्य स्वभाव लक्ष्य में आया, सूक्ष्म उपयोग करके लक्ष्य में आया, यही देव हूं ऐसा अंग हुआ। आज तक शरीर को अपना मानकर अपने पर जो अनुभव करता था, अच्छा विश्वास कहते हैं तो वो परम तत्व हो गया, खत्म हो गया, ये मैं नहीं, तो उसको गारंटी करेगा, अब भले शरीर रहे भले इंद्रिया دنیا سے بھی باہر پرماتما کوئی رہے گا وہ سب رہے گا، لیکن جانی کو اس نے اپنے تن کا سوپن ہی لیا، اس کا نام ہے اندروں کو جیتنا۔ تو باقی دربے اندروں کو جیتنے کے نام پر جو ہم الگ الگ پرکار کے پرکلپ کھڑے کرتے ہیں، ان پرکلپوں میں اندروں کو جیتنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ چرچا ہو گئی ہے شیش چرچا Thank you.